है। यही अपने समय पढ़ रहे तो आज इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं
सहजम कर्म कौन थे सदोस्मत नाते हुए। सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। सहज का मतलब क्या है?
आसान।
सहज का मतलब आसान, सामान्य रूप से सहज का मतलब है आसान। लेकिन सहज का वास्तव में जो शब्द है ये कैसे बना है? सह और जा, जा का मतलब है पैदा हुआ और सह का मतलब है साथ। तो जो हमारे साथ पैदा हुआ है वो कर्म। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको हम अपने साथ ही लेके आए हैं, हम पैदा हुए हैं उन कर्मों के साथ ही हम पैदा हुए हैं, उसे कहते हैं सहज कर्म। तो प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि शूद्र के घर में जो बच्चा पैदा होता था सामान्यतया, हमेशा नहीं लेकिन अधिकांश शूद्र के घर में जो बच्चे पैदा होते थे तो वो स्वाभाविक रूप से शूद्र होते थे, तो उनका जो कर्म है उनके साथ ही पैदा हुआ, वो जन्म से ही शूद्र। कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है जन्म से ब्राह्मण, तो उसका कर्म भी जो है उसके साथ ही पैदा हुआ है, ब्राह्मण का कर्म, ब्राह्मण का स्वभाव, तो उसे कहते हैं सहज कर्म। क्षत्रिय का जो बालक है तो उस कर्म को अपने साथ ही लेके जन्मा है क्षत्रिय का बालक। जैसे अर्जुन, अर्जुन क्षत्रिय हैं तो जन्म लेते ही कुंती महारानी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि तुम्हारा ये जो बालक है ये समस्त वीरों में सबसे श्रेष्ठ होगा और ये जो है शत्रुओं का विनाश करेगा। तो ये कर्म, अर्जुन का जो कर्म है ये कैसा है? सहज कर्म है। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के घर में धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, यज्ञ कुंड से पैदा हुआ, धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था यज्ञ कुंड से जन्म हुआ था, माता के गर्भ से नहीं पैदा, यज्ञ कुंड से पैदा हुआ। और जैसे ही ये बालक यज्ञ कुंड से पैदा हुआ तो वहीं पर ही एक रथ रखा हुआ था, रथ में बैठ गया और घोड़ों को जो है हाँका उसने और रथ को चलाया और यज्ञ कुंड के चारों तरफ उसने परिक्रमा की रथ में बैठ करके। क्षत्रिय स्वभाव का बालक, तो इसको कहते हैं सहज कर्म। तो बच्चे का जो है कर्म है देखने के लिए कि इसका सहज कर्म कौन सा है परीक्षा करते थे, माता पिता बच्चे की परीक्षा करते थे कि ये इसका सहज कर्म कैसा है, यानी स्वभाव से ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक का सहज कर्म देखा जाता कि सहज कर्म क्या है। सहज कर्म का मतलब है जब किसी प्रकार का दबाव ना हो और उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी हो तो वो सहज कर्म होता है। 5 वर्ष की अवस्था में बालक को सब प्रकार के कर्मों का ज्ञान हो जाता है कि कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा है और कोई नाप तोल कर रहा है या व्यापार कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है या कोई हथियार से युद्ध कर रहा है, कोई शासन कर रहा है और कोई कुदाल फावड़ा से परिश्रम कर रहा है। तो 5 वर्ष की अवस्था में बालक की सहज प्रवृत्ति देखी जाती थी कि सहज प्रवृत्ति कैसी है, यानी ऐसी प्रवृत्ति जो उसके साथ ही पैदा हुई है। तो ऐसे कई ये घटनाएं हैं कि बच्चे की सहज प्रवृत्ति देखने के लिए उस बच्चे के सामने कई चीज़ें रखी जाती हैं। एक जगह है उसको, उसके पास पैसा रख दिया, पैसा है, रुपया है, वो रख दिया बच्चे के सामने, और एक तरफ जो है
ग्रंथ रख दिया, भगवत गीता श्रीमद् भागवत ये पुस्तक रख दी। एक तरफ जो है हथियार जैसे तलवार है, फरसा है, ये रख दिए, एक तरफ बही खाते रख दिए, और बच्चे को जो है बिल्कुल स्वाभाविक रूप में छोड़ा जाता है कि उसको कुछ बताया नहीं जाता कि उसे क्या करना है। बच्चे से कुछ नहीं कहा जाता है, बच्चा अपनी इच्छा से बस माता पिता या उसके उनके और भी जितने संबंधी हैं देखते हैं कि बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति किस तरफ है, किस तरफ जाता है, तो पता चलता है कि ब्राह्मण ये बच्चा जो है कि स्वाभाविक प्रवृत्ति ब्राह्मण जैसी है तो ग्रंथ को उठाता है, अगर क्षत्रिय जैसी है तो हथियार को उठाता है, अगर वैश्य जैसी है तो बही खाते को उठाता है, और शूद्र जैसी है तो कुदाल फावड़ा इन चीज़ों को उठाता है। तो इसको कहते हैं सहज प्रवृत्ति, सहजम कर्म कौन्तेय। तो प्राचीन काल में ये परीक्षा ली जाती थी, जैसे ही बच्चा बड़ा होए, 5 साल का होए, तो उसको ये देखने के लिए कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है। श्री चैतन्य भी जब छोटे बालक थे तो उनके सामने भी ये सब चीज़ें रखी गई हैं देखने के लिए कि सहज कर्म कौन सा है। तो ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए थे श्री चैतन्य, भगवान है, तो उनके सामने भी सब कुछ रखा गया, बही खाते हैं, श्रीमद् भागवत की पुस्तक है, और पैसे सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, और कुदाल फावड़ा सब कुछ है, और बालक को छोड़ दिया गया अपनी इच्छा से, कोई जोर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, अपनी इच्छा से अपनी स्वभाव से वो बालक कहाँ जाता है। तो बालक ने श्रीमद् भागवत की पुस्तक उठाई तो सब लोग प्रसन्न हुए कि बालक बड़ा विद्वान निकलेगा, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो ये ब्राह्मण है, ये बालक ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से जो सहज प्रवृत्ति है वो देखी जाती थी, और प्रभुपाद बताते हैं कि ये भगवत गीता बहुत गहरा, ये बच्चे किसके बच्चे हैं, बच्चे को बाहर ले जाइए। तो जो सहज प्रवृत्ति है तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, सहजम कर्म कौन्तेय, उसमें दोष हो तो भी उसको त्यागना नहीं चाहिए। और प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा तात्पर्य दिया है कि ब्राह्मण के कर्म में भी दोष होता है, ब्राह्मण के कर्म में भी दोष होता है, अगर ब्राह्मण कुछ बताता है, उसका काम है शिक्षा देना, प्रचार करना, प्रभुपाद करते, प्रभुपाद ने प्रचार किया तो आज के समाज की जो कमियां हैं वो बताते थे, और लोग जो है कहते थे कि स्वामी जी आप तो बड़े साधु हैं, आप इतना कठोर क्यों बोलते हैं। तो दोष तो है लेकिन सहज कर्म में दोष होते हुए भी नहीं त्यागना चाहिए। वास्तव में दोष नहीं है, लोगों को दोष दिखाई पड़ता है, वो दोष नहीं है क्योंकि भगवान की दृष्टि से वो क्या है, वो कल्याणकारी है। ब्राह्मण है, गुरु है, शिक्षक है, वो बच्चे को दंड देते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं, उसको डांटते हैं, तो ये सहज कर्म है, गुरु का शिक्षक का ये सहज कर्म है कि बच्चे को वो डांटें। लेकिन बड़ा जहर जैसा लगता है, बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन सहज कर्म है ये, इसमें दोष होते हुए भी नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए इस कर्म को। तो भगवान ही कह रहे हैं सर्वारंभाय दोषेण धूमे नाग्नि रिवाव्रता। तो जितने भी कर्म हैं उन सब में दोष है, जैसे अग्नि में धुआं होता है, प्रत्येक कर्म दोष है। तो ब्राह्मण चूंकि प्रचार करता है और कृष्ण भावनामृत का उपदेश देता है, तो कृष्ण भावनामृत की दृष्टि से क्या क्या कार्य है गलत हैं वो ब्राह्मण बताता है, और बहुत कठोरता से बताता है। तो प्रभुपाद बहुत कठोर बोल देते हैं, और प्रभुपाद जो है फूल रास्कल ये शब्द का प्रयोग करते थे, सामने भी फूल रास्कल के शब्द का प्रयोग करते थे। लोग कहते हैं आप तो साधु हैं, आप ऐसे कड़वे शब्द क्यों बोलते हैं? साधु को तो मीठे शब्द बोलना चाहिए, मधुर शब्द बोलना चाहिए, कोमल शब्द बोलना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि साधु का मतलब है काटना, साधु अज्ञान को काटता है, इसलिए कठोर शब्द का प्रयोग करता है। तो प्रभुपाद ने आज के विज्ञान की निंदा की, वैज्ञानिकों की निंदा की, अमेरिका में जाकर के भी जो है उनके ही स्थान में जाकर के और उनकी निंदा की कि तुम्हारा समाज कुत्ते बिल्लियों जैसा है। लेकिन वहां पर भी प्रभुपाद की वाणी का आदर किया गया, उन्होंने सिर झुकाया, प्रभुपाद के सामने सिर झुकाया। लेकिन अगर प्रभुपाद ऐसे सोचते कि नहीं नहीं मुझे कड़वा नहीं बोलना है, मुझे कठोर नहीं बोलना है, तो ये आंदोलन फैलता नहीं, पूरी दुनिया में ये आंदोलन नहीं फैलता, कृष्ण भावना भावित लोग नहीं होते। तो प्रभुपाद के शब्द कभी शिष्यों को कठोर लगते थे, लेकिन प्रभुपाद ने कभी समझौता नहीं किया। और कई लोग छोड़ करके जाते, तो किसी भक्त ने कहा कि प्रभुपाद की बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके इस आंदोलन को बहुत से लोग छोड़ करके जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य इस बात का है कि ये लोग अभी भी जो नहीं छोड़ के गए हैं, ये आश्चर्य आश्चर्य है कि प्रभुपाद जो है कभी समझौता नहीं करते। जैसे बहुत खबर फैली थी कि चंद्रमा में गए वैज्ञानिक लोग, चंद्रमा में गए, रॉकेट अपोलो 11 चंद्रमा में गया। तो हम उस समय पढ़ाई करते थे, कक्षा 11 में थे, 1971 की बात है। तो हम सब लोग जो है आश्चर्य करते थे, खुशी मनाते थे, हाँ। लेकिन पूरी दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा था जो इसमें भ्रमित नहीं हुआ, और वो प्रभुपाद थे। प्रभुपाद ने साफ कहा हमें चंद्रमा में नहीं गए, चंद्रमा में नहीं जा सकते। और प्रभुपाद की इस बात को सुनकर के कई शिष्य प्रभुपाद को छोड़ के चले गए कि आप कैसे कहते हैं कि चंद्रमा में नहीं गए, वो तो सब उन्होंने शूटिंग भी करी है चंद्रमा की, वो गए हैं, उतारा है अपने यान को और उसमें सब कुछ उन्होंने मिट्टी खोदी है, मिट्टी भर के लाए ये सब, और आप कैसे कहते हैं? प्रभुपाद कहते चंद्रमा में नहीं जा सकते, चंद्रमा तो सूर्य से भी ऊपर है, चंद्रमा में वे इस शरीर से नहीं जा सकते, चंद्रमा में खाली मिट्टी है ये भी गलत है, जब यहाँ पर इतनी वनस्पतियाँ हैं और चंद्रमा वनस्पतियों को पोषण करता है तो चंद्रमा में क्यों वनस्पतियाँ नहीं होंगी, खाली मिट्टी कैसे होगी? तो एक एक एकमात्र प्रभुपाद ही थे पूरी दुनिया में जो कि इससे भ्रमित नहीं हुए और उन्होंने धोखा नहीं खाया, बाकी पूरी दुनिया ने धोखा खाया। अभी पता चला कि वास्तव में वो चंद्रमा में नहीं गए, लेकिन प्रभुपाद की इस बात से कई शिष्य लोग छोड़ के चले गए कि कैसे महाराज, सब पूरी दुनिया मान रही है कि चंद्रमा में गए हैं और ये कह रहे हैं चंद्रमा में नहीं गए, प्रभुपाद ने कहा चंद्रमा में नहीं गए। तो प्रभुपाद ने समझौता नहीं किया, और शुरू में जो है वो विष की तरह लगता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अमृत, वही जो है प्रभुपाद के जो शिक्षाएं उपदेश हैं वो विष की तरह लगते थे, बाद में क्या हुए अमृत की तरह। और जो प्रभुपाद की इस शिक्षाओं में अड़े रहे, बने रहे और विचलित नहीं हुए, तो उनको जो है फिर कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई, कृष्ण की प्राप्ति हुई, कृष्ण प्राप्ति हुई जहाँ हुई थे तो कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से कितना भी दोष हो, अपने सहज कर्म में कितना भी दोष हो, उसको त्यागना नहीं चाहिए। और यहाँ पर भगवान जो दोष की बात कर रहे हैं वो समाज की दृष्टि में है, दोष समाज की दृष्टि में दोष है। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं तो समाज की दृष्टि में बड़ा दोष लग रहा है अर्जुन को, अपने ही संबंधियों की हत्या कर रहे हैं, अपने पिता, अपने भाई, अपने मामा, अपने ससुर, उन्हीं की हत्या कर रहे हैं, तो बड़ा दोष दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में उसमें दोष नहीं है, जितने भी कर्म हैं ये सब भगवान के चूंकि आदेश के अनुसार होते हैं तो कल्याणकारी हैं। शुरू में लगता है कि बहुत गलत हो रहा है लेकिन कल्याणकारी है। अर्जुन के सामने युद्ध है और अर्जुन को भगवान कह रहे हैं युद्ध करो, ये तुम्हारा सहज कर्म है, ये ऐसा अवसर है कि तुम्हें युद्ध करना है। लेकिन इस युद्ध के द्वारा क्या हुआ, अधर्म का विनाश हुआ तो धर्म की स्थापना हुई। तो सहज कर्म जो है ये भगवान के द्वारा ही ये प्रवृत्ति होती है। सहज प्रवृत्ति जो है अगर हो रही है तो समझना चाहिए कि भगवान ने ये प्रवृत्ति दी है। यथा प्रवृत्ति भूता नाम, कि जिनके द्वारा ये प्रवृत्ति मुझे प्राप्त हो रही है। तो सहज प्रवृत्ति जो अपनी है अगर हमारी ब्राह्मण की है और मैं अगर शूद्र के परिवार में पैदा हुआ हूँ लेकिन मेरी सहज प्रवृत्ति ब्राह्मण की है तो मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण का कर्म करना चाहिए और मुझे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, हालांकि शूद्र के परिवार में पैदा हुआ हूँ। और अगर मैं क्षत्रिय के परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरी प्रवृत्ति शूद्र की तरह है, सहज प्रवृत्ति शूद्र की तरह है, तो मुझे शूद्र ही माना जाना चाहिए। तो जो सहज प्रवृत्ति है उसको क्या मानना है कि भगवान से प्रवृत्ति आ रही है, यथा प्रवृत्ति भूताना, और उस कर्म के द्वारा मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। अब दोष कहाँ है, दोष तो जो है लोगों की दृष्टि में होता है और कभी नहीं होता है, और वही कार्य जो है जो दोष दिखाई देता है आगे चल करके वो गुण बन जाता है, बहुत बड़ा गुण बन जाता है। अर्जुन को जो है शुरू में बड़ा दोष दिखाई पड़ रहा था कि इस युद्ध में बड़ा दोष है, लेकिन युद्ध के बाद जो है जब शांति की स्थापना हुई, धर्म की स्थापना हुई, तो वही कार्य बड़ा गुण बन गया। तो लोग कुछ भी कहते हैं, है ना, तो हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को भी जो है लोग बाहर की दुनिया में लोग कई मामलों में निंदा करते हैं कि भाई ये किताबें फोर्स करते हैं। एक ये भी शिकायत आती है कि ये जो भक्त लोग हैं सड़कों में लोगों को फोर्स करते हैं किताब लेने के लिए। अब ये दोष क्या है उनकी नज़रों में है, जो स्वयं दूषित हैं तो दूषित लोगों की नज़रों में ये दोष है। जैसे कोई व्यक्ति जो है जाग रहा है और घर में आग लगी है और घर के लोग सो रहे हैं तो वो क्या करता है, जगाता है, तो जो सो रहे हैं उनकी नज़रों में ये बड़ा दोष है कि आप जो है सबको क्यों जगा रहे हो और नींद क्यों खराब कर रहे हो, सबको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उनकी नज़रों में दोष है। लेकिन आखिर वो स्वयं ही दूषित हैं, तो निद्रा में वो जो है अच्छा अच्छी निद्रा ले रहे हैं और बड़ा अच्छा स्वप्न देख रहे हैं लेकिन मकान में आग लगी है, तो उनको क्या लगता है कि ये आप जो काम कर रहे हैं आपको बड़ा दोष लग रहा है, आप नींद खराब कर रहे हैं सबको और चिल्ला चिल्ला करके उठाते हो और कहते हो भागो भागो, तो ये आपका काम जो है इसमें बहुत दोष लग रहा है। तो जो सो रहे हैं वो अज्ञान में है, और वो सोच रहे हैं कि हम आनंद ले रहे हैं, हमारे आनंद में बाधा क्यों पहुंचा रहे हो, हमारी नींद में बाधा क्यों पहुंचा रहे हो। तो इसी प्रकार का ये दोष है, क्योंकि लोगों की नजरों, और फिर जब वो जागते हैं और जब देखते हैं मकान में आग लगी और भागते हैं, तब फिर वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बचा लिया, तो फिर वही कार्य गुण बन गया। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि दोष कितना भी दोष हो अपने सहज कर्म में वो त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ऐसी प्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। और उसमें भगवान कहते हैं कि सुधर्मे नित्यनाम श्रिया, उसमें अपनी मृत्यु भी हो जाए तो भी कल्याण है, तो उसमें कल्याण है। तो प्रभुपाद भी जो है प्रभुपाद कलकत्ता में एक जगह प्रवचन दे रहे थे, तो नक्सलपंथी जो थे तो उन्होंने प्रभुपाद को एक पर्चा भिजवा दिया। पर्चे में लिखा था कि आप अपना प्रवचन बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। प्रभुपाद ने पर्चा पढ़ा, प्रभुपाद ने कहा कि मैं प्रवचन बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो मेरा प्रवचन है ये प्राचीन काल के जितने भी साधु संत हैं उन्होंने यही बात बोली है, और मैं उसी बात को बोल रहा हूँ, और इसी में अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं, मेरा ये भी सौभाग्य है। तो प्रभुपाद ने अपना प्रवचन बंद नहीं किया। तो ये भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, तो भगवान को प्रसन्न करने में कोई दोष नहीं होता, बहुत बड़ा गुण है। लेकिन लोगों की नजरों में कभी दोष दिखाई पड़ता है ना, तो हमें इसकी चिंता नहीं करना है। तो प्रभुपाद का जो ये तात्पर्य है ये बहुत गहरा है, और भगवान यही बता रहे हैं कि जो भगवान की पूजा हो रही है अपने सहज कर्म से, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, उसमें आप अपना कुछ स्वार्थ नहीं है आपका, आप सहज प्रवृत्ति के द्वारा आप भगवान की पूजा कर रहे हैं बिना कर्म फल की आशा किए। आप फल भोगने के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, सहज कर्म कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की पूजा, तो ये भगवान की पूजा है। इस कर्म से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, और आप इसी से जो है आप अगर जीते हैं तो भी कल्याण है, और मरने में भी कल्याण है, जीने में भी कल्याण है और मरने में भी कल्याण है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद् गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा पाद शांति ललिता विशाखा गौरताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सुखदेव की जय। हरे कृष्ण।